ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 12। यथाग्निमेघ्नस्य मृतं च गोसु भिव्यन्नमम्बोद्यमने च वृत्तिम्। योगैर्मनुष्या अधियन्ति हि त्वाम् गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। शब्दार्थ यथा जिस तरह अग्निम आग एधसी काष्ठ में अमृतम अमृत जैसा दूध च तथा गोसु गायों में भूवि भूमि पर अन्नम अनाज अम्बु जल उद्यमने उद्यम के द्वारा च भी वृत्तिम जीविका जोगे भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा मनुष्य लोग अधियन्ति प्राप्त करते हैं। ही त्वाम आपको ही निसंदेह गुणेषु गुणों में बुद्ध्या बुद्धि से कवयः वदन्ति महापुरुष लोग ऐसा कहते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जिस प्रकार काठ से अग्नि गाय के थन से दूध भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक उद्यम से जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जाती है उसी तरह इस भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्यात्मा है वे उसकी पुष्टि करते हैं। तात्पर्य यद्यपि भगवान निर्गुण है और इस जगत के भीतर नहीं पाए जाते हैं लेकिन सारा भौतिक जगत उनसे व्याप्त है जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है मया ततमिदं सर्वम्। यह भौतिक जगत भगवान की भौतिक शक्ति के प्रसार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और सारा जगत उन्हीं पर टिका है मस्तानि सर्वभूतानि। फिर भी भगवान को यहाँ पर नहीं पाया जा सकता न चाहं तेषु अवस्थितः। किंतु भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है। सामान्यतया कोई व्यक्ति तब तक भक्ति योग का अभ्यास प्रारंभ नहीं करता जब तक उसने पूर्व जन्म में इसका अभ्यास नहीं किया हो। इसके अतिरिक्त गुरु तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति योग शुरू किया जा सकता है। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। भक्ति योग का बीज गुरु तथा भगवान कृष्ण की कृपा से प्राप्य है। भक्ति योग के अभ्यास से ही भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है और उनका साक्षात्कार किया जा सकता है। प्रेमान्यन छूरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। भगवान को कर्म ज्ञान तथा ध्यान जैसी अन्य विधियों से नहीं देखा जा सकता। मनुष्य गुरु के निर्देशन में भक्ति योग का अनुशीलन कर सकता है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु हो स्मरणं पादसेवनम्, तब भक्त भगवान को इस जगत में भी देख सकता है। यद्यपि वे अदृश्य रहते हैं, इनकी पुष्टि भगवद गीता में भक्त्या माम अभिजानाति जावान जश्चास्मि तत्ततः तथा श्रीमद् भागवतम में भक्त्या अहम् एकयाग्राह्यः ऐसे हुई है। इस प्रकार भक्ति के द्वारा ही भगवान की अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है। यद्यपि अभक्तों को वे न तो दिखते हैं न ही उनकी समझ में आते हैं। इस श्लोक में भक्ति युग के अनुशीलन की तुलना कई भौतिक कार्यकलाप से की गई है। काठ को रगड़ने से अग्नि प्राप्त हो सकती है, धरती को खोदने से अन्न तथा जल मिल सकता है और गाय के थन को धोने से अमृत जैसे दूध प्राप्त हो सकता है। दूध की तुलना अमृत से की गई है जिसे पीकर अमर बना जा सकता है। हाँ, केवल दूध पीने से कोई अमर नहीं हो जाता, दूध आयु को बढ़ा सकता है। आधुनिक सभ्यता में लोग दूध को महत्वपूर्ण नहीं मानते, अतः वे दीर्घजीवी नहीं होते। यद्यपि इस युग में लोग 100 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, किंतु अधिक मात्रा में दूध न पीने के कारण उनकी आयु घट जाती है। यह कलयुग का लक्षण है। कलयुग में लोग दूध पीने की अपेक्षा पशु को बद्ध करके उसका मांस खाना अधिक अच्छा मानते हैं। भगवद गीता में दिए गए उपदेशों में भगवान गोरक्षा का उपदेश देते हैं। गायों की सुरक्षा करनी चाहिए, उनसे दूध प्राप्त करना चाहिए और इस दूध के विविध पकवान बनाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि पर्याप्त दूध पिए, इससे उनकी आयु बढ़ेगी, मस्तिष्क विकसित होगा और वह भक्ति कर सकेगा और अंततः भगवान की कृपा प्राप्त कर सकेगा। जिस प्रकार अन्न तथा जल प्राप्त करने के लिए धरती को खोदना आवश्यक है, उसी प्रकार गायों को सुरक्षा प्रदान करना और उनके थनों से दूध प्राप्त करना आवश्यक है। इस युग के लोग सुखी जीवन के लिए औद्योगिक उद्यम में प्रवृत्ति रखते हैं, किंतु वे उस भक्ति को करने से इनकार करते हैं जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाकर जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। दुर्भाग्यवश जैसा कि कहा गया है, नते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु दुराशया एव हिरथमानिनः। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन लोग यह नहीं जानते कि जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवत धाम को वापस जाना है। जीवन के इस उद्देश्य को भूलकर वे निराशा तथा हताशा में कठोर श्रम करते रहते हैं। मोघासा मोह कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसा तथा कथित वैश्य लोग उद्योगपति या व्यापारी बड़े बड़े औद्योगिक उद्यम में लगे रहते हैं, किंतु वे अन्न तथा दुग्ध में कोई रुचि नहीं रखते। किंतु जैसा कि यहाँ पर सूचित किया गया है, मरुस्थल में भी धरती की खोद कर जल प्राप्त करके अन्न उत्पन्न किया जा सकता है। जब हम अन्न तथा तरकारी उत्पन्न करेंगे तो गायों को संरक्षण प्राप्त होगा और इन गायों से प्रचुर दुग्ध मिल सकता है। पर्याप्त दूध मिलने से तथा इसे अन्न और सब्जी के साथ मिलाकर हम हजारों अमृतमय व्यंजन तैयार कर सकते हैं। हम इन व्यंजनों को खा सकते हैं और उद्योगों के उद्यम से तथा बेकारी से बच सकते हैं। कृषि तथा गोरक्षा निष्पाप होने के साधन है और इनसे भक्ति के प्रति आकृष्ट हुआ जा सकता है। जो लोग पापी हैं, वे भक्ति के प्रति अनुरक्त नहीं होते, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जैसा तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजते मां गृहप्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप समूल नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। इस कलयुग में अधिकांश लोग पापी अल्पायु अभागे तथा विक्षुब्ध है। मंदास मंद मतयो मंद भाग्या है उपद्रता। उनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही सलाह दी है, हरेर्नाम 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 केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलह तथा कपट के युग में उद्धार के एकमात्र साधन भगवान का पवित्र नाम का जप है, इसका कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। ओम अज्ञानं तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखानितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण जगन्नाथ जय वैकुंठ नामधृक जय देव कृपा सिंधु जय लक्ष्मी पते प्रभु। जय नीलांबुज श्याम नीलजीमुत सन्निभ जय पद्माधरी त्रिभ्याम निषेवित पदाम्बुजम। जनार्दन जगत बंधु शरणागत पालक त्वं दास 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 दासानां दासत्वं दहि मे प्रभो दासत्वं दहि मे प्रभो। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी श्री राधिका रमण के सेवक सेविका वृंद, आज प्रातःकालीन भागवत कक्षा में उपस्थित होने के लिए सभी को विशेष स्वागत है। श्रीमद् भागवत के ये जो प्रसंग हम अभी आलोचना कर रहे हैं, इसमें ब्रह्मा समेत समस्त देवगण भगवान को स्तुति कर रहे हैं। स्तुति स्तुति श्लोक है। हम जानते हैं कि देवताओं का ही गुण है, जब तकलीफ पड़ेगा तो भगवान के सार 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 करेंगे। भागवत में अधिकांश जाग में ही आप देखते हैं देवता कितनी बार स्तुति करते हैं फिर भी बिगड़ जाता, फिर भी हाथ जोड़ते हैं, फिर हमेशा ही करते रहते हैं। और यही तो सूर और असुर की पहचान है। वो तकलीफ पड़ने से पहले प्रयास अपना करेंगे, जब नहीं होगा तब फिर भगवान के पास हाथ जोड़ेंगे, लेकिन असुर कभी नहीं करेंगे, तो उनके विपरीत है। तो जो भी हो, यहां ये जो श्लोक कहा गया ये सीधा ब्रह्मा जी के द्वारा, सारे देवता हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के समेत भगवान को स्तुति करते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने ये बात कहे हैं, ब्रह्मा और समस्त देवता, ये तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं हमसे तो कितने 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 गुणे हर प्रकार से बड़े हैं, है ना नहीं? किसी माने में हम उनके लायक नहीं है, लेकिन वो कितने बार भगवान को देखे हैं, अब भी देख रहे हैं और डायरेक्ट उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका ज्ञान उनके समझ कितने उच्च कोटि का है, कितने हाई एक्सपीरियंस्ड है। श्री ब्रह्मा जी यहां कहते हैं, इससे हमको क्या शिक्षा लेना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, जथा अग्नि एधसी, ये भगवान को जानने का कुछ उपाय बताते हैं। ब्रह्मा जी कही कहना है, प्रभु अभी तक भगवान उनके सामने नहीं आए होंगे, तो फिर भी उन्हें करते हैं, लोग बोलेंगे सारे देवता बोले सारा कोई तो है ही नहीं, किसको बोल रहे हैं? बोले नहीं नहीं हवा है। एक एक करके उदाहरण ब्रह्मा जी बताते हैं, जथा अग्नि एधसी, जिस प्रकार अग्नि लकड़ी में है, दिखता है हमको नहीं, लेकिन जैसे रगड़ करो प्रकट होता है, झलक आ जाता है, स्पार्कलिंग हो जाता है, रगड़ होने से स्पार्कल होता है। स्पार्कलिंग होना मतलब है वहां मौजूद है। जैसे काष्ठ में अग्नि और जैसे और क्या बताते हैं, गाय में दूध, गाय में दूध कोई फाड़ फूड़ कर देखने से मिलेगा, मिलेगा क्या ढूंढ करके? नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्रक्रिया है, स्थान को दोहन करो दूध आएगा। ठीक इसी प्रकार भूमि में अन्न और जल, भूमि को कर्षण आदि करने से उससे प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार जो कुछ काम करने से, कुछ साधन के द्वारा जो चीज दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, छूने में नहीं आता, वो प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो है तभी तो प्रकट होता है। भले हमको ना दिखे ना समझे, लेकिन वो है। ये उदाहरण देकर महा जी कहते हैं, जैसे लकड़ी में आग है, गाय में दूध है, भूमि में अन्न और जल है, ठीक उसी प्रकार ये संपूर्ण संसार में हर कोने कोने में हर जगह पर भगवान विद्यमान है, दिखते नहीं हमको, कैसे पता चले? बोले ओतप्रत जुड़ थी, संपूर्ण सृष्टि केवल भगवान के बहिरंगा शक्ति के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे हम जो वस्त्र पहनते हैं, ये वस्त्र का मुख्य उपादान क्या है? धागा है, ओत और प्रत ऐसे और ऐसे धागा जुड़े होकर कपड़ा तो बने और है क्या, उसमें सूत्र ही है, लेकिन हम बोलते धागा कहां, धागा तो नहीं कपड़ा है। अरे मूर्ख, कपड़ा आया कहां से? ये संपूर्ण संसार जो देख रहे हो आया कहां से? उन्हीं के शक्ति की परिणति है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते। लेकिन देखने का कोई साधन करो, करो उपाय करो, दिख पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये कई साधन ब्रह्मा जी ने बताते हैं और बता करके कहते हैं कि देवताओं को बोले देखो वो हमको दिखाई नहीं पड़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब करते हैं, है वही मजते न, कैसे हम मानेंगे? वो ये जैसे उदाहरण बोले, जैसे काष्ठ में अग्नि है, उपाय के द्वारा प्रकट होते हैं, गाय में दूध है, उस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त होते हैं, धरती में अनाज जल आदि है, उस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार कुछ करना पड़ेगा हमको, बिना कुछ साधन, बिना कुछ प्रक्रिया किए भगवान मिलेंगे नहीं, भगवान की प्राप्त नहीं हो सकता। बोले साधन क्या है, प्रक्रिया क्या है, जिससे भगवत दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा लाभ हो जाए? बोले योगाभ्यास। ये योग क्या है? नाक कान बंद रगड़ना नहीं, भक्ति का योग के अभ्यास। शास्त्र में अनेक जगह प्रमाण है, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं और कोई उपाय नहीं। भक्त्याम एकयाग्राह्यम, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं, बाकी किसी के द्वारा नहीं। कोई ज्ञान धान कर्म आदि साधन के द्वारा भगवान पकड़ में नहीं आते, लेकिन भक्ति कोई करे तो ऐसे पकड़ में आते हैं कि हम आश्चर्यचकित हो जाए। ऐसे तो ऐसे केवल भक्ति के द्वारा संभव हो सकता है। तो भक्ति जो का अभ्यास कोई करते हैं तो उनके सामने प्रकट हो जाते। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, संत सदैव हृदय विलोकयंती। तो संत हमेशा दिखते हैं उनको, उनके पास भक्ति के एंटमेंट है, वो आंख में लगाते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। हमारे पास आई नहीं तो हम काम को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन केवल नहीं दिखता तो उसका मतलब है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। कई ऐसे चीज है हमको दिखता नहीं है। आपके ऊपर एक पंखा घूम रहा है, हमारे ऊपर कौन घुमा रहा है कोई दिखाई नहीं पड़ते, घूमती इतने शोर से कैसे घूमता है? कोई है नहीं ना घुमाने वाला, तो खड़ा तो कोई नहीं है, कैसे घूमता है? लेकिन हमको नहीं दिखने पर भी हमको पूरा विश्वास है कौन घुमाने वाला है। बोले सुई जान क्या इसलिए घूमता है, वो बटन दबाया घूमता है, बटन एक बंद हो जाता है। अब प्रकरण में आया कि कौन घुमाता है उसको, वो बटन, उसको ऐसे ऑन किया तो घूमता है, अप किया तो बंद। तो अच्छा ये यहां रहकर घुमाता है उसको, ये भी ना समझ है। अगर वहां से सप्लाई बंद हो जाए तो स्विच की रगड़ रगड़ हाथ तोड़ दो, अप ऑन करके वो चलेगा भी नहीं, क्योंकि स्विच नहीं चलाता, चलाता और कुछ है। वो हमको देखने नहीं आता, समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता, देखने में नहीं आता। अगर चलते समय कुछ करके छेड़खानी करके देखो, उनका प्रकट अगर हाथ में लग जाए ना, शक लग जाए तो पता चल जाएगा, दिमाग में ठंडा हो जाए कुछ है, बाप रे बाप रे इसका अंदर है, है? ज्यादा इधर उधर करेगा तो समाप्त हो सकते हैं, को टाइम नहीं लगेगा मरने में, लेकिन हमको दिखा नहीं पड़ता। अरे केसी उसका रूप रंग कुछ नहीं है, कुछ थोड़ा देखने करते हैं, इधर उधर थोड़ा जोड़ दो, स्पार्किंग उठ जाएगा, यही उसके उपस्थिति के पहचान प्रमाण है, स्पार्कल तुरंत विद्यमान है। अब जब नहीं है करंट तो कितने रगड़ घुसे कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब में ये सब आता है, दिखता है, सब कुछ होता है, तो इसलिए यही प्रकट प्रमाण है, उसी को विश्वास करके इसी अभ्यास में लग जाना चाहिए। और इस मनुष्य जीवन में जो भी हमारे पास इंद्रिय शक्ति सामर्थ्य बुद्धि वृत्ति हमको मिला है, वो केवल उन्हीं को जानने के लिए समझने के लिए मिला है, वही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, एकमात्र लक्ष्य है। अगर उसको नहीं जाने तो आपने खाने कमाने लग जाएंगे, दो ही काम है, अगर भगवान के बनो नहीं तो माया के बनो। और माया के तो हम बने हैं अभी नहीं, इसी जन्म में नहीं, कितने कितने जन्म से बने हैं, अब तक कम से कम समझ में आ जाना चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं, कामादीना कतिना कथिधा पालिता दुर्निदेशा तेसां जाता मैन करुणा त्रपान उपशांति। बोलते हैं कि इस काम को, हमारे अंदर जो कामना भरा हुआ है, जिनको इंद्रिय के द्वारा हम भोग करने के प्रयास करते हैं, इस इंद्रिय के गुलाम बन करके उनके इच्छा को पूरा करने के लिए हम कितने दिन से लगे हैं, दिन क्या कितने जन्म से लगे हैं इस काम से, कति न कतिधा पाणिना पाणिता दुर्निदेशा, इतने दिन से पूरे मन बुद्धि शरीर लगा करके इस कामना को पूर्ति करने के लिए, इंद्र को तुष्टि करने के लिए लगा हूं, तेसाम जाता मई न करुणा। लेकिन इतने ये कठोर है ये इंद्रियां, ये कामना, कि एक बार उनके मेरे ऊपर थोड़ा कृपा भी नहीं किया कि बेटा तू तो कितने जन्म से मेरे तुष्टि करने में लगा है, मैं तो अभी तक सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं, लेकिन तू तो फिर भी लगा है, तुझे क्या पता चलता है कि तू मुझे कोई सेटिस्फाई कर सकता, ऐसे कभी मुझे बोला नहीं, कभी एक बार भी थोड़ा सा कृपा मेरे ऊपर नहीं किया, कई जन्म से मैं उनके पीछे लगा हूं उनको पूरा करने के लिए उनकी इच्छा। तेसाम जाता मई न करुणा न त्रपा, लेकिन मैं बेशरम, मुझे भी शर्म नहीं आया कि तू इतने दिन से इतने जन्म से लगा है, वो तो कुछ होता भी नहीं भाई, उसने टाइम बर्बाद कर रहा है तुम्हें, मैं ऐसा भी कभी नहीं समझा, तब भी लगा, इस मनुष्य जन्म मिला वही काम करता हूं, बिल्ली बना तभी किया, कुत्ता बना तभी किया, जो बना तभी करते गया, वो करते करते हजारों जन्म के हजारों साल के एक्सपीरियंस लेकर के, हताशा निराशा का एक्सपीरियंस लेकर के फिर भी वही काम कर रहा हूं। अरे थोड़ा अब भी तो बेशरम समझ जाओ, ये होता नहीं कुछ उसमें, नहीं फिर इसमें कभी नहीं हो सकता। तो अभी बोलते हैं, प्रभु बहुत हो गया, टू मच, ना तो वो मुझे छोड़ा ना मैं उसको छोड़ा, लेकिन अब तो देखा कि हद हो गया, मेरे से नहीं होगा, अब लब्ध बुद्धिम, आप बुद्धि प्राप्त हो गया मुझे, क्या प्राप्त हो गया, मैं बस और इनके पीछे नहीं पड़ूंगा, केवल आपके पीछे पड़ूंगा, दैट्स इट। यही निर्णय को लाना, यही निर्णय करना जीवन की सफलता है, यही निर्णय लाना। जब तक उनके लिए भगवान हमको दिए हैं, शरीर दिए, मन दिए, बुद्धि दिए, इंद्रिया दिए, तो बस हम समझ गए केवल भगवान को प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे बैठ करके, तो पेट तो नहीं भरेगा, बोले प्रार्थना करने के लिए तो ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इंद्रिया सब क्यों दिया गया? केवल प्रार्थना करने के लिए? कर्म इंद्रिया से क्या प्रार्थना करेगा? मन वाणी से करेगा, इंद्रिया से क्या प्रार्थना करेगा? तो इसलिए बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं कि मैं कर्मणा अधिकार अस्तु, मतलब काम करने के लिए अधिकार दिया है, उसको नहीं करेगा तो दोषी है। काम करो, फल को आशा मत रखो। किस लिए काम करो? ना आपके लिए करो, आपकी मर्जी, आपको देने दो नहीं देने दो। सो केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, आवर प्रेयर शुड बी अकम्पेनिड विथ आवर एंडीवर। हमारा प्रार्थना जब तक हमारा परिश्रम के साथ ना हो तो प्रार्थना अधूरा है, पूरा नहीं है। केवल हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से नहीं काम चलेगा, इस प्रार्थना के साथ साथ हमारे परिश्रम और चेष्टा प्रचेष्टा होना चाहिए, तो ये पूरा प्रार्थना होता है। तो इस प्रकार पूरा करें, ये प्रक्रिया बताते हैं ब्रह्मा जी। इधर बोले ये प्रक्रिया के तरह भगवान है, अवश्य है, वो देखते हैं सुनते हैं, तेरे अंदर ही है, तेरे सामने है, तेरे बगल में है, लेकिन तुझे करना पड़ेगा, समथिंग यू हैव टू डू। कुछ तो रगड़, कुछ तो प्रक्रिया करना पड़ेगा, कुछ तो साधन करना पड़ेगा। साधन करो, प्रकट होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। तो इसी को विश्वास करके हमारे सारे साधन इसी लक्ष्य में केंद्रित होना चाहिए, और इसको छोड़ करके हमारे साधन दूसरे किसी केंद्रित हो जाए। अब कितने कितने पहले जन्म से हम करके आए हैं, इस जन्म में वही करेंगे? वही बड़े बड़े हाईटेक डिग्री लेकर के करेंगे क्या? वही पेट भरेंगे, इंद्र तृप्ति करेंगे, इसी के लिए तो करते हैं। और कोई ऑब्जेक्शन है? कोई प्रोजेक्ट है नहीं हमारा, ले दे करके सारे प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति वास। अरे वो तो सर्वत्र लभ्यते दैवा, वो तो सब जगह में ऐसे मिलता है, लेकिन हम बेवकूफ उसके पीछे फेट पड़े नहीं। हमको जो साधन दिया गया है ये कुछ और काम के लिए दिया गया है। जब तक हम इस साधन को उसी काम के लिए उपयोग नहीं करते तो हम कैसे संतुष्ट हो सकते, कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? असंभव। तो इसी को हम सफलता प्राप्त करेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, पहने कैसे होगा? हम तो इतने सारे करना पड़ता है तभी काम होगा। प्रभुपाद जी ने एक जगह में एक उदाहरण देते हैं, बोले तू इतना टेंशन लेता है, व्यस्त है, तू खाता है तो कितना खाता है भाई? 200-250 ग्राम? आप लोग ज्यादा कोई खा सकते हैं? मान लो पूरा दिन में आधा किलो, आधा एक किलो के अनाज खाने के लिए कितने घंटा हमको मिनिमम परिश्रम करना पड़ता है? 12 घंटा। चलो 12 घंटा, 8 घंटा से लेकर के आगे जितने ओवर टाइम कर दो तभी कम पड़ जाता है। लेकिन वो कितना खाएंगे हमने? 250 से 1 किलो की बजट है हमारा। एक हाथी जंगल में रहता है, उनका कितना खुराक है एक दिन का? ग्राम से हिसाब होगा, टनों से गणना करना है उसको। कौन सा ऑफिस जाता है, कितने घंटा काम करता है, फैक्ट्री चलाता है, दुकान करता है, कुछ करता है? इज डूइंग समथिंग? नो। लेकिन खाली बैठता क्या? नहीं, खाने के लिए परिश्रम करता, पेट भरता, इतना टेंशन नहीं उसको। जब उनको भी भगवान ने व्यवस्था दे रहे थे, जो टन खाता है उसको भी देते हैं, और चींटी इतनी छोटी सी मिलीग्राम खाता है उसको भी देते हैं, तो हम तो बिल्कुल बीच में थोड़े से खाने, हम तो कोई नहीं देंगे, वो देते हैं, उनके तरफ से व्यवस्था बिल्कुल पक्का है, कोई कमी नहीं है। भगवान के हमारे लिए जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को कभी अगर हम विचार करें तो हमारा बुद्धि सटीक हो जाएगा। इसी को कहते हैं गुणेशु बुद्धेशु, ये शब्द इसमें आया। इस गुण के द्वारा कैसे कार्य हो रहा है उसको बुद्धि से समझना चाहिए। भगवान इसी को कहते हैं कि ये तो समझ लो, इंद्रियभ्य परम ये सारे जो भौतिक पदार्थ है उसमें इंद्रियां उससे बढ़ करके, इंद्रियभ्य परं मन, मन इंद्रिय से बढ़कर के, मनसस्तु पराबुद्धि, बुद्धि भी और सुखमय मन से, और बुद्धि से भी बढ़कर वो है जो हम। तो इसलिए एवं बुद्धा परं एवं बुद्धे परं बुद्धा संस्तभ्य आत्मनमात्मना जय शत्रु महाबाहो काम रूपं दुरासद। इस प्रकार जो काम जो आपको जबरदस्ती पाप कार्य में लगा रहा है उसको अगर तू जीतना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय एवं बुद्धे प्राबुद्धा, बुद्धि को इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि बुद्धि निर्णयात्मक है, डिसीजन लेना होगा, नहीं मैं केवल यही काम करूंगा दूसरा काम करूंगा ही नहीं, टेक दैट डिसीजन, ये निर्णय लीजिए और काम कीजिए इसके अनुसार तो होगा। एवं बुद्धे प्राबुद्धा संस्तभ्य आत्मनमात्मना, बुद्धि में डिसीजन लेकर के मन इंद्रिय को उसी में लगाइए तो निश्चित रूप से ये दुरासद शत्रु काम को आप जीत जाओगे, फिर पाप से बच जाओगे, है ना। नहीं ये प्रमाण है, चाणक्य पंडित अपने नीति शास्त्र के शुरुआत में बड़े गजब का एक लाइन लिखे हैं, एक श्लोक लिखे हैं, जब कभी ऐसे विचार आते हैं उनके बात याद आता है। उन्होंने कहते हैं कि मैं तो भाई डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया, मैं क्या निर्णय क्यों लिया भाई, क्या निर्णय लिया, बोले मैं निर्णय लिया, मैं कहा कैसे फंसूंगा झमेला में, अरे क्यों कैसे निर्णय ले लिया, काम धाम नहीं करोगे, नौकरी नहीं करोगे, नहीं क्यों, बोले का चिंता मम जीवन है, मेरा जीवन मेरी चिंता की क्या बात है भाई, इससे बिंदास होकर क्यों बोलते भाई, का चिंता मम, तेरे जीवन में कोई चिंता नहीं, क्यों बोलते का चिंता मम जीवन है, यदि हरिर विश्वम बरोगीयते, यदि हरि वो एडवर्टाइज करते हैं हर जगह पर, मैं ही चलाने वाले पालने वाले रखने वाले रखाने वाले मैं ही हूं, तो मैं कहा कि छोटा मोटा मैं हूं करके हुआ रही हूं, वो बोलता है ठोक ठोक करके मैं करता हूं, हंसने लगे, हाँ बोलता रहता है ऐसे सब आप जैसे लोग बोलते रहते, सही में ऐसा होता है क्या प्रमाण है हरि करते हैं, कभी देखा कभी हरि को आया कभी, तुझे खिलाता पिलाता देखा कभी दिया, तू नहीं करेगा तो भूखे मर जाएगा, बेकार आलसी कहें के यही बात कर रहा है, बोले ऐसा मत कहो आलसी कहें के, प्रमाण चाहते ना, क्या प्रूफ है, हरि चलाते हैं, हरि शब्द करते हैं, व्हाट इज द प्रूफ, तो पंडित चाणक्य जी कहते हैं प्रूफ बताता हूं सुनिए, अभी तक ऐसा कोई जीव जगत में नहीं हुआ जो इस प्रमाण को सामना नहीं किया, बोलते कथम नौ चेदर अर्थे जननी स्तमन निस्सरत, एक ऐसे प्रमाण देते हैं, बोलते कैसे एक नवजात शिशु के लिए अभी अभी सद्यजात शिशु के लिए जो जानता नहीं कि क्या खाऊं क्या ना खाऊं मेरे लिए क्या डाइटिंग है, वो जो डाइट बनाने वाले डाइटिशियन भी वो भी नहीं जानता है और क्यों रोता है पता भी नहीं, इस प्रकार अवस्था में जान ना बच्चा जानता ना माँ भी जानता, इस अवस्था में उन्हीं के लिए जो अति आवश्यक खाद्य डिसाइड करके उनके लिए बिल्कुल प्याक करके जैसे परफेक्ट जगह में ऐसे प्लेसमेंट किए हैं जो कि आसान से उनको उपलब्ध हो जाए उनको ग्रहण कर सके, जननी के स्तन में दूध का व्यवस्था कौन किया, इस बात को सोचे कोई, हम सब मात्र स्तन पिए हैं दूध पिए हैं लेकिन कभी सोच में ना मां सोची ना बच्चा सोचा कि आया कहां से ये, ना दूसरे कोई सोचे वो भी तो वही राइस दाल चपाती खाती है हम भी तो वही खाते हैं, तो हम से कोई दूध निकला नहीं, कांड छाट करो तो रक्त ही निकलेगा, ये दूध कहां से आता है भाई, ऐसे दूध व्यवस्था किए विद बटल प्याक निपल इन प्रॉपर प्लेसमेंट, उठा के गोद में ले तो वही ऑन द स्पॉट अवेलेबल, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा, इस प्रकार इस रक्त को दुग्ध में परिणत किए और हमेशा नहीं करते, जब आवश्यकता अभी एक असहाय शिशु को मैं भेजूंगा वो बच्चा बेचारा बोल भी नहीं सकता ना वो समझ भी नहीं सकती और क्या उनको देना, तो इसीलिए एडवांस बुकिंग, बच्चे जन्म होने से पहले दुग्ध आता ना, नहीं हम जैसे कहीं जाते हैं पहले बोलते हैं कि मैं आऊंगा थोड़ा बुकिंग कर लेना, और तो पता नहीं बुकिंग होगा कि नहीं, जाके झगड़ते हैं अरे मैं पहले फोन किया था क्यों नहीं किया, ऐसे हमारे पास रहता है इस मामले, लेकिन भगवान का ऐसा है ही नहीं, इतने पहले से बुकिंग करके एडवांस व्यवस्था किए हैं, लेकिन हम उसको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। बुद्धि से थोड़ा सोचो, बुद्धिया एवं बुद्धे पराबुद्धा, बुद्धि के द्वारा सोचो कि कैसे व्यवस्था हुआ। हम आने से पहले इस मां के स्तन से दूध आया कहां से, और जब तक दूध रहेगा जब तक आपको बाद में फिर सूख जाएगा, फिर नहीं बनाएंगे, क्योंकि बनाने वाले कोई है, वही बनाते कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आपके लिए आपकी जरूरत है, आपके ऊपर विशेष कृपा है, आपके मेंटेनेंस के दायित्व तो उनका है, यही तो प्रूव है। दैट्स व्हाई इज गिविंग इन एडवांस अरेंजमेंट, आपका इतने इतने सुव्यवस्था करके रखे हैं, और उस व्यवस्था को हमने पा करके उसको पी करके उसको ग्रहण करके आकर के छाती में ठोके, कोई भगवान भगवान कुछ नहीं, बेवकूफ बेशरम कहीं के, दूध पिया नहीं तुमने, तूने बनाया था, कौन बनाया उसको, इतने बुद्धि ही ने तो इसी को चाणक्य जी सोचते हैं, उसका कोई इससे बढ़कर कोई प्रमाण हो सकता है, कथम बोले कैसे मां के स्तन से दूध आता है बच्चों के लिए, नवजात शिशु के लिए कैसे आता है। इसी को मैं इत्यालोच्य मुहुर मुहु, हे जदुपति कमलापते, हे जदुपति कृष्ण, हे लक्ष्मीपति नारायण, उसी बात को, एक ही बात को मैं बारम्बार विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं हाय हाय कितने कृपालु है, वास्तविक कितने उदार है, कैसे हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। हम जन्म होने से पहले ही व्यवस्था करते हैं, और जिसके द्वारा व्यवस्था करते ना उनको पता है, ना जो व्यवस्था को लेता है उनको पता चलता है, और हम बढ़ जाते हैं। यही है भगवान की विलक्षणता, भगवान जो देते हैं ऐसे देते हैं कि लेने वाला को समझ में नहीं आता है कि वो दिए हैं करके, पता भी नहीं चलता। लेकिन बाकी भौतिक संसार में कोई देने वाले, कोई जरूरत पड़ा रिक्शा में 10 रुपया कंपड़ा प्लीज दे दे, 10 रुपया कोई दिया मरते हुए याद है 10 रुपया दिया था यार, 10 रुपया के लिए कितना याद करना वो देखना पड़ता। अगर आपके घर में किसी का दी हुई कोई चीज रखा है ना, है उनका है, कभी बुला सकते ले, उनका सामान है, हमेशा याद रहता है। लेकिन हम जैसे महामूर्ख को कभी सोचे, ये जो हवा हम लेते हैं किसका दिया हुआ, किसी बाप का है, ये जो शब्द बोल रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, ये शब्द किसके बाप का है, कहीं से निकलता है, कोई बोलेगा किसका है। जो पानी पीते हैं कोई हाथ से छाती में हाथ ठोकर बोलेगा ये पानी मेरा है। ये जो लाइट लेते हैं लाइट किसका है। जो कब से अब तक हमेशा देते रहते हैं, हर चीज देते रहते हैं, लेकिन धन्य हो दाता देने वाला, ऐसे दे देता है कि हम लेने वाले को पता नहीं चलता है कि उनका है करके, हम मानते हमारा ही है, क्योंकि छिपा के देता है। क्यों वो ये गड़बड़ी हो, छिपा के क्यों देते, हमारा सामना देने से हम हमेशा मानते हैं कि उन्होंने दिए, क्यों छिपा के देते हैं, जानते हैं क्यों छिपा के देते हैं, क्यों उनको शर्म लगता है, क्या करो मैं केवल इतना ही देता हूं उसको, इतने उदार दाता है, सब कुछ देने पर भी उनको इतने कमी महसूस होता है, बोलता कैसे दूं, इसे छुपा कर दे देता हूं उसे पता ना चले, बयान में दे देता सामने में क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। जीवन पर्यंत जीवन का प्रत्येक उपादान देने पर भी उन्होंने अपने को दाता करके मानते हैं, छिपा कर देते हैं, वो ऐसे छिपा कर देते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि भाई उनका है, पता भी नहीं चलता। यही उनके इस दाता का विलक्षणता। तो ऐसे अद्भुत उदार दाता के लिए हम अगर उदासीन हो जाए, उनको याद ना करे, उनको थोड़ा थैंक यू भी ना करे, तो हमारे से बेईमान कृतज्ञ कोई हो सकता। इसलिए केवल हमारे पास जो भी शक्ति बुद्धि सामर्थ्य है इसी को लगा करके केवल उन्हीं के सेवा करना, यही निर्णय ही लेना चाहिए। दिस शुड बी द ओनली डिसीजन ऑफ आवर इंटेलिजेंस, हमारे बुद्धि का एकमात्र निर्णय केवल यही होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ होता है वो मूर्खता का परिचय है। सब देखते हैं समझते हैं लेकिन बोलते नहीं है, अपेक्षा करते हैं, अपेक्षा करते हैं। कोई पिता माता आपको बचपन से कितने कष्ट करके गुजारा पाला, अगर आप अब बढ़ गए समर्थ हो गए कमाने लगे, अगर उनको पूछे नहीं तो भगवान कहते हैं आपको 100 जन्म तक आपने मांस को खाना पड़ेगा, इतने खतरनाक पनिशमेंट दिया जाएगा। और माँ बाप दिए भी क्या, जो भी कुछ दिया बोलते भगवान बोलते इतने लिए, अरे आप क्या क्या नहीं दिया हमको, जब उनके लिए हम नहीं पूछेंगे तो जब इतने बड़े पनिशमेंट भोगना पड़ेगा, और जब भगवान को हम नहीं भूल जाएंगे तो कितने बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, आउट ऑफ इमेजिनेशन, सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हमारे पास कुछ बुद्धि है, विचार शक्ति है, केवल इसी चीज को विचारना चाहिए, इसी चीज को बुद्धि लाकर समझना चाहिए। गुणे बुद्ध्वा, इस श्लोक में यही कहते हैं, गुणेश बुद्ध्या, इस गुण और बुद्धि को लगा करके यही समझ लेना चाहिए, बस यही अपने ज्ञान की समझ की सार्थकता है। नहीं तो बाकी सारे ये फॉर्मूला याद करके ये करके सारे मर जाएंगे, कोई काम नहीं आएगा। इतने सारे 25 साल 50 साल लगा करके डिग्री लिया और अगर शरीर छूट गया फिर ये विषय करना खत्म, कोई काम करने नहीं, यूजलेस। लेकिन इस प्रकार के समझ एक बार की आ जाए, प्रभुपाद जी ने आत्मरे में लिखते हैं भक्ति कैसे शुरू होता है, भक्ति करने के लिए हम जानते हैं पहले जन्म से को किया तभी ना, बाकी काम तो सब जीरो हो जाता है, लेकिन भक्ति कभी मिटता नहीं है। अगर थोड़े बहुत में हम इस समझ लाए, भक्ति कुछ किए, भजन कुछ किए, ये हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, कभी नहीं मिट सकता, अविनाशी तत्व है। तो जो हम थोड़े बहुत किए अभी, इसलिए हमको प्रेरित, कृष्ण प्रेरित किया, भूल गया किसे, जाओ ना इधर, वही हमको प्रेरित करता है भगवान के पास आने के लिए, भजन करने के लिए, साधु संग करने के लिए, कृपा लब्ध करने के लिए, यही प्रेरणा करता है। लेकिन हम कुछ किए नहीं, नील केवल पाप कर्म किए, केवल इंद्र तृप्ति किए, तो कभी भी द्वंद से मोह से उठ नहीं सकते, भक्ति का बात तो बहुत दूर है। इसी को कहते हैं भगवान में गीता में, तेसाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनका पाप का खाता नील हो गया, बैलेंस नील, जो केवल पुण्य कर्म में लगे हैं, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजते मां दृढ़ता, उन लोगों ने द्वंद से मोह से उठ करके संकल्प पूर्वक मेरा सेवा करेंगे, मेरा भजन करेंगे। हम करने पर तो मन लगता नहीं, बहुत प्रयास करता भटक जाता है, होता नहीं, कैसे, तो पापी हो, क्या पाप किया, भगवान को नहीं मानते हो, सबसे बड़ा खतरनाक पाप है। भगवान जो कहते हैं, जब वसुदेव देवकी के सामने ही बात स्वयं कृष्ण बलराम कहते हैं मथुरा में, कि जो केवल पैदा दे दिया वसुदेव देवकी, तो कृष्ण के किया थी क्या, जेल में थे बेचारे, कुछ उनका पास करने का कुछ था ही नहीं, अब भगवान ही प्रकट होकर के, भाई कैसे प्रकट हुए, वो भी अपना क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि पैंट शर्ट पहनकर भगवान आए थे, अभी तक तो कोई बंदा पैंट शर्ट पहनकर आया। हम जितने भी प्राणी जीवी जगत में आए हैं, हमारा ओपनिंग रो करके होता है ना, नहीं रो करके जीवन शुरुआत करते हैं, बेशरम बोलते हैं सुखी होने के लिए आए, अरे बेबक तू ओपनिंग कैसे किया था, रो कर तू ओपनिंग किया, वो क्लोजिंग करेगा रुला करके, और बीच में बोलता है कि मैं हैप्पी, ये तो केवल हिप्पी है इसे बात कहेंगे, नहीं, भगवान ने अपने संपूर्ण आभरण के साथ वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए थे कारागार में, लेकिन फिर भी इतने एहसान मानते हैं उन्होंने, जब कंस वध के बाद उस स्थल में उठ करके जाके मां के और पिता के पैर पकड़ते हैं गिड़गिड़ा के, वो तो काट के पुतली जैसा बन पड़े हैं वसुदेव देवकी, वो सोच रहे हैं ये हमारे बेटा सही में हमारा बेटा है, बाप रे बाप, कंस को मार डाला, उनके सारे अष्ट मल्ल को मार डाला, ये कुबलयापीड़ हाथी को मार डाला, हम सुने थे भगवान महाबली है, बलिनांग बलवतांग, अरे वो तो भगवान है, वो तो भगवान है, भगवान अवतार लेते हैं कुछ काम करने के लिए, फिर काम करे चले जाएंगे, वो हमारा बेटा थोड़ी है, वो तो गया, वो सब कर लिया, मार मोर दिया, अब जाएगा, वो बेचारे यही सोच में फंसे हैं, कुछ कर नहीं पाते। कृष्ण बलराम जाकर के माता पिता के चरण में सर टोकर बोलते, मां मां पिता, लेकिन उनका तो ऐसे खो बैठे हैं, शरीर में कुछ है कि नहीं, केवल जीने का एक ही प्रमाण शरीर में दिखाई पड़ता है कि गंगा जमुना की धारा आंख से निकलता है, केवल आंसू गिरता था, इसलिए पहचाना जाता था कि जिंदे हैं, लेकिन ऐसे खो में बैठे हैं, ये हमारा सही में बेटा क्या है, क्योंकि इसे अद्भुत कर्म, इस प्रकार कर्म किया है क्योंकि बेटा कर ही नहीं सकता, ये तो भगवत कर्म, ये तो भगवान है, भगवान तो आता है जाता है, वो थोड़ी हमारा, उसे भगवान किसी का नहीं है। लेकिन अब भगवान जो बेटे के रोल करने के लिए आए पब्लिकली सभी के सामने जाकर के ऐसे स्नेह और ममता दिखाए, प्रणाम किए कि उनकी समाधि टूट गया, ऐसे खींच करके गले के डिप्ट लिए, आलिंगन मुद्रा में लिए कि अभिषेक कर डाले उनको। हाँ, भगवान जब पुत्र बनेंगे फिर कैसा बनेंगे। तो इसी अवस्था में वसुदेव देवकी के सामने कृष्ण भगवान ने कहते हैं, बोले हे मां, हे पिता, आप मेरे जन्मदाता है, कुछ नहीं किए मेरे से, जन्म से आधे घंटे के अंदर मुझे ट्रांसफर कर दे दूसरे जगह में, लाल में पहले कुछ नहीं किया आपने, फिर भी केवल मेरे जन्मदाता होने के कारण आपके प्रति में इतने ऋणी हो गया हूं कि हे पिता मुझे माफ कर दे, हे मां मुझे माफ कर दे, मेरे बाल सुलभ चपलता आपको मैं दिखा नहीं पाया, आपको मैं खुशी नहीं कर पाया, आपके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मदद नहीं कर पाया, मुझे इसलिए माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए मुझे। और वही बात तभी कहते हैं, हे माता पिता, अगर कोई बेटा को माता पिता ने उसके केवल जन्म देने के बाद इतना जन्म दे करके पाले पोसे पढ़ाई लिखाई बड़ा किए, अगर ओ भगवान के समर्थ होने के बाद अगर उनके सेवा नहीं करता तो मैं ये आयन बना के रखा हूं 100 जन्म तक उनको अपना ही मांस खाना पड़ेगा, इतने बुरी पनिशमेंट दूंगा उनको। किसको? जो केवल जन्म लेने के बाद चले गए थे फिर कोई काम नहीं, इतने भी एहसान मानना पड़ेगा। और जो हमारे लिए सब कुछ किए हैं अभी तक करते रहते हैं तो उनको कितने कृतज्ञता ज्ञापन करना पड़ेगा, ये हम सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। तो इसी विचार के, इसी बुद्धि के निर्णय लेकर के भगवान को कैसे सेवा, कैसे उनके भजन में लग जाए, ये सब आप लोग डिसीजन करेंगे, डिसाइड करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है?
हरे कृष्ण महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे यहाँ पर देवता लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, तो मेरा कुछ थोड़ा हट के प्रश्न है, ये भक्त लोग भी ऐसे, कुछ लोग जो नए नए मंदिर से जुड़ते हैं तो देखा जाता है कि उनके जीवन में कुछ कष्ट आना शुरू होता है, फिर उन लोगों से जो है भक्ति छूट जाती है, फिर मंदिर आना छूट जाते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान सबके शुभचिंतक है, सभी जीवों से प्रेम करते, तो फिर वो व्यक्ति भगवान से दूर हो गया।
वो दूर होना चाहता है तो क्या करे, भगवान शुभचिंतक है इसलिए हमको परेशानी देते हैं, कष्ट देते हैं। जो शुभचिंतक नहीं होगा वो नहीं करेगा, है ना? तो हमारा कर्तव्य है उनको झेले, नहीं कर पाए तो रिजेक्ट हो गए, है ना?
तो एकदम से नए भक्त है तो उनके साथ भगवान ऐसे क्यों परीक्षा रहती थी?
नए भक्त तो और ज्यादा परीक्षा लगाते हैं, पुराने थोड़ा बहुत परीक्षा दे चुके, उनको पहले टेस्ट करना। और कुछ? यस,
हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज। महाराज जी, जैसे आपने लेक्चर में बताया था कि जो हमारी कामनाएं वो संतुष्ट नहीं होती है, यानी कि अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के बाद भी इस अंडरस्टैंडिंग में नहीं पहुंचते कि इनको संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और मतलब कि इस पर कैसे पहुंचे इस अंडरस्टैंडिंग में?
इसी क्लास सुन करके। ओके, और कुछ? ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।